सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।
ओम शांति। नया साल की शुभकामनाएं, मुबारक बधाइयां। वर्तमान समय संगम युग, परमात्म पालना में पलने वाले समय, परमात्मा से वरदान लेने का समय, कदमों में पदम जमा करने का समय, औरों को परमात्मा का बनाने का समय है। ऐसे समय है, ऐसी सीजन है संगम युग, परमात्म प्यार की, परमात्म पालना की, परमात्म प्राप्ति की बरसात हो रही है। ऐसे परमात्म बरसात के समय, परमात्म प्राप्ति के समय में भी अगर हम ब्राह्मण बच्चे, बाबा के बच्चे, अगर छोटी छोटी कमी कमजोरियों को अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं, हमें जितना प्राप्ति होना चाहिए उतना प्राप्ति नहीं होता है। खेती करने वाला किसान बरसात के समय जब जरूरत हो फसल की, पानी की, और पानी को अगर रोक के नहीं रखे तो धीरे धीरे लीकेज से निकल जाती है। बरसात तो हुई परंतु जितना फायदा होना चाहिए नहीं हो पाता है। उसी तरह ब्राह्मण जीवन में भी अगर हम बाबा के बच्चे अगर छोटी छोटी अपनी कमी कमजोरी पे अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हमें नुकसान को झेलना पड़ता है। और आज बाबा ने इसी के संदर्भ में जो प्रश्न उत्तर श्रृंखला चल रही है उसी की सिलसिला में आज की चर्चा है। 109 नंबर प्रश्न है कि वातावरण को पावरफुल कैसे बनाए, वातावरण को पावरफुल बनाने की क्या युक्ति है। वातावरण विद्या जोर आलय विद्यालय, विद्या अर्थात ज्ञान विवेक, आलय अर्थात उपार्जन करने के स्थान अर्थात घर, विद्या अर्जन करने वाले स्थान को विद्यालय कहा जाता है घर को। उसी तरह बात प्लस आवरण वातावरण, बात अर्थात पवन हवा, आवरण अर्थात कवर करना ढकना ओढ़ना, यूं भी कह सकते घेराव डालना। जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है अभी, सर्दी के मौसम में हम बाबा के बच्चे चाहे जो भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को सर्दी तो लगता है, सर्दी से बचने के लिए हम रहते हैं बिस्तर के ऊपर में और ऊपर से रजाई डाल देते हैं। बाहर सर्दी है, बीच में रजाई है और उसके नीचे हम हैं, सर्दी हमें कोई असर नहीं करता है। वातावरण की, सर्दी के वातावरण को प्रभाव से मुक्त होने के लिए बीच में हमने क्या डाला, रजाई को डाला। वर्तमान समय सारे विश्व को अपने चपेट में ले रखा, अभी भी ले रखा है लेकिन पहले जितना नहीं है। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के वायरस से बचने के लिए हमें शिक्षा सावधानी जो दी गई है कि मास्क पहनना है, और मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, कैप पहन के, पीपीई किट पहन के हम जो पॉजिटिव पेशेंट है, सीरियस पेशेंट है कोरोना के, उनके पास भी जा सकते हैं और हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी उनके पास जाके उनके जीवन रक्षा करते हैं। वातावरण में वायरस फैली हुई है लेकिन पीपीई किट अर्थात पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई किट, पीपीई पहन के वो वायरस से बच जाते हैं और दूसरों को भी बचाते हैं। वैसे मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी यूज करते हैं, और मच्छरदानी हम यूज करते हैं, हम रहते हैं अंदर में, मच्छर बाहर है लेकिन हमें मच्छरदानी उसे बचाता है। उसी तरह वर्तमान समय संगम युग में कलयुग का भी प्रभाव है और बाबा की शिक्षा भी हमें मिल रही है, सत्ययुगी दुनिया के संस्कार भी धारण करना है। तो उस कलयुगी दुनिया के वाइब्रेशन से, वातावरण से मुक्त होने के लिए हमें भी कुछ ओढ़ना होगा, मच्छरदानी लगानी होगी, मास्क पहनना होगा, रजाई ओढ़नी होगी, जिससे हम दुनियावी वायरस, दुनियावी ठंडी, दुनियावी मच्छर से बच सकते हैं। सत्ययुगी दुनिया में, सत्ययुग त्रेता में प्रकृति के पांचों तत्व सत्व प्रधान अवस्था में होती है। सत्व प्रधान अवस्था में होने के कारण हमें सुख पहुंचाते हैं, सहयोग देते हैं, मदद करते हैं, दुख नहीं देते हैं। वर्तमान समय प्रकृति के पांचों तत्व का भी तमो प्रधान अवस्था होने के कारण वो हमें जितना सहयोग करना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं। और हमने ही संगम युग में प्रकृति के पांचों तत्व को अपने सकाश के द्वारा अपने वातावरण को पावरफुल बना के उनको सत्व प्रधान बनाए थे, जिसके बदौलत हमें 2500 वर्ष तो पूर्ण रूप से हमें मदद करता है, सहयोग देता है। प्रकृति के पांच तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। सतयुग की दुनिया के जलवायु, जल झरने से बहते आते, जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे के जड़ से गुजरते गुजरते आते हैं और वो जल हम पीते हैं, स्नान करते हैं, हमें कोई प्रकार की बीमारियां नहीं होती है। वर्तमान समय जो पानी को प्यूरिफाई करना पड़ता है, सतयुगी त्रेता की दुनिया में, सतयुगी त्रेता में प्यूरिफाई करने की जरूरत, नेचुरल प्यूरिफाई रहता है, वो हमें तकलीफ नहीं पहुंचाता है, हमें नुकसान नहीं करता है। वर्तमान समय जो वायरस का प्रभाव हवा में है, वातावरण में है, सतयुगी दुनिया में ऐसी वायरस होगी नहीं जो हमें मास्क पहनना पड़ेगा। शुद्ध हवा होता है, शुद्ध पवन होती है, जिससे तन और मन खुश रहते, स्वस्थ रहते हैं। अग्नि दुखदायी नहीं होगी, वैसे तो मैं समझता हूं तो भोजन बनाना नहीं पड़ता होगा। अग्नि अर्थात सूर्य देवता भी फल इतने बड़े बड़े मिलेंगे, वो नेचुरल बन जाएगी, उसे प्रोग्राम उसी से काम चलेगा। सूर्य देवता जो अभी इतना गर्मी करते हैं, उनसे ही कई सारी किरणें निकलते जिससे बीमारियां होती है, नुकसान पहुंचता है, ऐसे नहीं होगा। जिस समय जितना तापमान की जरूरत हो उतना ही तापमान देंगे वो। पृथ्वी में इतनी भरपूरता होगी, इतनी खादमल होंगे, इतनी पौष्टिक आहार उपज करेंगे जो दूसरी पौष्टिक आहार, दूसरी विटामिन मिनरल्स लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और आकाश भी बेमौसम बरसात नहीं करेंगी, जब जरूरत हो तभी करेंगी, जितना जरूरत हो उतना ही करेंगी। जिस कारण पांचों तत्व सत्व प्रधान होने के कारण आत्मा और शरीर हमेशा स्वस्थ और मस्त रहते हैं। वहां पे ना डॉक्टर होगी ना दवाई मेडिकल स्टोर होगा। तो ऐसे वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए, ऐसी दुनिया लाने के लिए, उसके लिए पहले क्या करना होगा? तो पहले हमें जिस स्थान पे हम रह रहे हैं, जहां हमें भगवान ने रखा है, जिस स्थान, चाहे हम घर में है, सेंटर पे है, चाहे कहीं किराए पे रह रहे, चाहे मधुबन में रह रहे हैं, उस स्थान के वातावरण को हमें पावरफुल बनाना होगा। तो बाबा ने जो उत्तर में बताया है, वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए पहले स्वयं को पावरफुल बनाओ, स्वयं पावरफुल बनाओ, उसके लिए अमृत वेले से लेकर हर कर्म के लिए अपना शक्तिशाली स्टेज हो। शक्तिशाली स्टेज है या नहीं, उसकी चेकिंग के ऊपर में थोड़ा विशेष अटेंशन हो, बाबा कह रहे हैं। दूसरों की सेवा में या सेवा के प्लान में बिजी होने से अपनी स्थिति कहाँ कहाँ हल्कापना, स्थिति में कहाँ कहाँ हल्कापन आ जाता है, इसीलिए यह वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। सेवा होती है लेकिन वातावरण शक्तिशाली नहीं होती, इसके लिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना पड़े। कर्म और योग, हम तो पहले सुनते थे कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन बाबा ने यहाँ पे बताया कर्म और योग के साथ में हमारी स्थिति भी शक्तिशाली हो। इस बैलेंस की थोड़ी कमी है, सिर्फ सेवा में बिजी होने के कारण स्वयं की स्थिति शक्तिशाली नहीं रहती। जितना समय सेवा में देते हो, जितना तन मन धन सेवा में लगाते हो, उसी प्रमाण एक का लाख गुना मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता। इसका कारण है कर्म और योग के बैलेंस नहीं है। जैसे सेवा के प्लेन बनाते हो, पर्चे छपवाते हो, टीवी रेडियो में करना है, जैसे वह बाहर के साधन बनाते हो, वैसे पहले अपनी शक्तिशाली अपनी मनसा को शक्तिशाली का साधन विशेष होना चाहिए। यह अटेंशन कम है, फिर कह देते हैं बिजी रहे इसलिए थोड़ा मिस हो गया, फिर डबल फायदा नहीं होता है। तो बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, तो शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए और शक्तिशाली स्थिति से वातावरण को पावरफुल बनाने, वातावरण पावरफुल बनेगा जिससे सेवा में डबल फायदा होगी। तो उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कुछ साल पहले एक घटना घटी थी, एक व्यक्ति को डाकू ने खून कर दिया था। रात 8-9 बजे के 9-9:30 बजे के बीच में ये घटना घटी होगी शायद, और दूसरे दिन 7-8 बजे लोगों को पता चला कि इनको खूनी ने खून करके चला गया। खूनी खून करके चले गए, कहां गए, कौन थे, कहां थे, पता नहीं चला था पुलिस वालों को। पुलिस वालों ने फिर ट्रेनिंग दिया हुआ कुत्ता को मंगाया और कुत्ता ने उस वाइब्रेशन को कैच करते करते उस खूनी को पकड़ लिया। आखिर कुत्ता ने क्या कैच किया होगा? तो वाइब्रेशन कैच किया ना, सुंग सुंग के वाइब्रेशन कैच किया और जहां वो खूनी व्यक्ति था वहां जाके उनको पकड़ लिया। तो जब एक हिंसक व्यक्ति, खूनी व्यक्ति अपनी अगर वाइब्रेशन छोड़ सकता है, तो योगी सन्यासी तपस्वी आत्मा क्यों नहीं अपनी शुद्ध संकल्प शुद्ध वाइब्रेशन छोड़ सकते हैं? योगी व्यक्ति भी अपनी वाइब्रेशन छोड़ते हैं। तो एक योगी व्यक्ति अपनी वाइब्रेशन पावरफुल बनाने के लिए उनको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले स्वचिंतन करनी होगी उन्हें, स्वचिंतन करनी होगी कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, भ्रुकुटी के तख्त में विराजमान हूं। गहराई में जाना होगा, साक्षी होके स्वयं की आत्मा को देखना होगा, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना होगा। आत्मनिरीक्षण करना होगा कि मुझे आत्मा के अंदर में क्या क्या कमी है, क्या क्या गुण है और क्या क्या भरना है। आत्म अन्वेषण करना होगा। दूसरा है परमात्म चिंतन करना होगा। परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान की चिंतन करना होगा, ज्ञान की चर्चा करना होगा, जिससे वातावरण क्या होगा, पावरफुल बनेगी। अगला है बार बार उस सुप्रीम पावर को, उस पिता परमात्मा को आह्वान करके बुलाना होगा। बार बार अपने कारोबार में, अपनी सेवा में, अपनी ड्यूटी पे पूछना होगा कि आगे क्या करना है, अच्छा ये ऐसे हुआ ऐसे क्या करना है। हम अपने साथ वालों को पूछते ना, ये इतना काम किया ठीक है कि नहीं, अरे तुमने गड़बड़ कर दिया, ऐसे भी बोलते ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसे बार बार पूछना होगा, उनको बताना होगा, उनको बोलना होगा कि हम सेवा पे आए हैं, आप यहां से कहीं जाना नहीं। हमारे विश्व रतन दादा एक कुर्सी खाली रखते थे, किस लिए कि बाबा यहां बैठेगा और मैं जो करूंगा वो देखेगा, मैं जो बोलूंगा वो सुनेगा। वैसे बार बार बाबा को आह्वान करके बुला के बिठा के रखना होगा और बीच बीच में पूछना होगा, बाबा मैंने इतना किया ये ठीक है कि नहीं, और क्या करना है, और देखना है कि कहीं चले तो नहीं गए दूसरे के बुलावे पे। अरे बाबा मैं आपको बुलाया था बैठने के लिए, मेरा काम अटक रहा है, आप आओ बैठो इधर। तीसरा है पर्सनल योग भट्टी, ये चौथा है ना, पर्सनल योग भट्टी और संगठित योग भट्टी और एकांत का अभ्यास, जिससे वातावरण पावरफुल होगी। अगला है भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण जी को भगवान कहते हैं और श्री कृष्ण के लिए कहा गया है तुम चित्त चोर हो। भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं चित्त चोर, बाबा ने भी हमारे चित्त को चुरा लिया, लेकिन हम बच्चों को गुण चोर बनना है, किसी को चित्त नहीं चुराना है, गुण को देखना है, विशेषता को देखना है और गुण ग्राही बनना है, गुण चोर बनना है। और गुण को देखेंगे, गुण को चोरी करेंगे तो वो गुण हमारे में आ जाएगी और वो वाइब्रेशन में फैलेगा और वातावरण पावरफुल बन जाएगी। हमारी बोली बोल मधुर होना चाहिए, मृदुभाषी, मीठा बानी बोल रे मनवा, क्या लगे तेरा अनमोल मोल। बाबा ने अपने मीठे बोल के द्वारा इतने बच्चों को अपना बनाया। कर्म हमारे श्रीमत प्रमाण यथार्थ होना चाहिए, जैसे हमारे कर्म को देख के लोग प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि वातावरण बनाने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है और व्यवहार हमारे सरल होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, जिससे हमारे दूसरे भी सहयोग करेंगे और वातावरण को पावरफुल बनाने में हमें मदद करेंगे। बाबा मम्मा के, जिनके द्वारा बाबा ने सत्यु की दुनिया की स्थापना, पावरफुल वाइब्रेशन वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं, उनके जीवन चरित्र को अपने आंखों के आगे देखना, चिंतन करना, वर्णन करना, जिससे वातावरण पावरफुल बनेगी। बाबा ने कुछ दिन पहले वरदान में बताए थे, क्या बताए थे बाबा ने कुछ दिन पहले वरदान में बताए थे किसी की कमी कमजोरी को नोट नहीं करो, हर एक को सहयोग का नोट दो। और कमी कमजोरी को नोट करते रहेंगे तो वाइब्रेशन कैसा निकलेगा, कमी कमजोरी वाला निकलेगा। इसीलिए कमी कमजोरी को नोट नहीं करके सहयोग का नोट देना है हमें। दीदी का बहुत फेवरेट था 5 केला खाना है। 5 केला कौन कौन सा, अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले होकर अकेले में अकेला बाप को याद करना है। हमेशा बुद्धि में रहे कि हम अकेले आए थे, अकेले हमें जाना है, कोई हमारे साथ जाने वाले नहीं है, ना कोई हमारे साथ आया था, अकेले में, हम है संगठन में लेकिन हम है अकेले, अकेले होकर अकेले बाप को याद करना है। अकेले हुए होते हुए भी बहुतों से मन ही मन बात करते रहते हैं, खिचड़ी पकाते रहते हैं, तो रोज हमें 5 केला खाना है। और मनसा को शक्तिशाली बनाने का साधन अपनाना है, और भी जो कुछ मिले, कर्म और योग का बैलेंस रख के, जो बाबा ने उत्तर में बताया, बैलेंस रखना है। कर्म कंसस हो के हमें कर्म नहीं करना है। तो ये सब हमें वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए ये सब साधन अपनानी चाहिए। और वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए क्या बातें नहीं होनी चाहिए, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वातावरण को अगर हमें पावरफुल बनाना है तो हमें झरमी झरमी की बातों से हमें दूर रहना होगा। झरमी झरमी की बातें अर्थात परचिंतन प्रदर्शन से हमें दूर होना होगा, उसमें हमें नहीं जाना होगा। बाबा कहते हैं परचिंतन पतन का जड़ है और स्वचिंतन उन्नति का सीढ़ी है। तो हम बाबा के तो बन गए हैं, जीवन भी लगा दिया है, तन मन धन भी लगाते हैं, फिर भी अगर परचिंतन प्रदर्शन करते रहे तो हमें उन्नति नहीं हो सकती, अवनति अवश्य होगी। हम अभी किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्नति के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए हमें परचिंतन प्रदर्शन से मुक्त होना होगा। बाबा के स्थान पे सेंटर हो, गीता पाठशाला हो, चाहे मधुबन हो, कारोबार की स्थूल कारोबार की बात हमें नहीं करनी है। देह भान, देह अभिमान में लाने वाली और आने वाली बातें हमें नहीं करना चाहिए। अगर स्थूल कारोबार की बातें करते हैं, परचिंतन प्रदर्शन की बातें करते हैं, देवान देवन माने आने वाली बातें करते हैं, तो वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। जो वातावरण पावरफुल है, वो वातावरण से वो पावर अलौकिकता आध्यात्मिकता के वातावरण नहीं रहेगी। पैसे की लेन देन की बातें नहीं करनी है हमें, कोई भी भाई से या बहन से पर्सनल लाइफ की बात गहराई में जाकर के, उतना गहराई में नहीं जानी चाहिए। अगर हम जाते हैं तो वातावरण हम बनाते नहीं है, वातावरण बिगाड़ते जरूर है। टोंट करना, खुद के लिए कुछ न कुछ मंगाना, ये सब वातावरण को बिगाड़ता है। इस सब बात पर हमें ध्यान देना है। वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए हमें अंदर बाहर एक होना चाहिए। अगर अंदर एक बाहर दूसरी है तब वातावरण पावरफुल नहीं बन सकती है। चापलूसी वाली बातें, चाटुकारिता वाली बातें, चुगली वाली बातें अगर हम करते हैं, वातावरण बिगड़ जाता है। झूठ बोलना, गुस्सा करना, रोब से बोलना, जोर जोर से बोलना, राजनीति की बातें करना, किसी को गिराने वाली बातें करना, ये सब वातावरण को बिगाड़ते हैं, पावरफुल बनने नहीं देते हैं। कर्म कॉन्शियस होके कर्म करना, इतना कर्म में हम व्यस्त हो गए, इतना बिजी हो गए, कर्म तो अच्छा हो रहा है लेकिन बाबा भूल गए हैं, जीवन का लक्ष्य भूल गए हैं, कर्म किसका करे वो भूल गए हैं, किस लिए करे वही भूल गए हैं। तो बात अपन पावरफुल नहीं बन सकती है। दूसरों की सेवा में ज्यादा बिजी हो जाना, कई बार जब पार्टी आती है तो अपना सेवा भी भूल जाते हैं अपनी लक्ष्य भी भूल जाते हैं, योग भी भूल जाते हैं। जहां बहुत जरूरत वहां तो जाना ही होता है, निमित्त आत्मा कई बार भेजते हैं तो वहां तो जाना ही है, लेकिन इतना टू मच में हमें नहीं जाना है जिससे अपनी स्थिति कमजोर हो जाए। और अगर हमारी स्थिति कमजोर होती है तो हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का भी स्थिति कमजोर हो जाती है। कर्म और योग का बैलेंस अगर नहीं है, वो तो हमने बोल दिया है, तो भी वातावरण अगर से विशेष अटेंशन नहीं है अपनी दिनचर्या के ऊपर तो भी वातावरण बिगड़ सकती है। व्यर्थ की बातें, टाइम पास करने वाली बातें, काम कुछ नहीं है, चलो है थोड़ी देर बैठे हैं, खाली है तो थोड़ा कर लेते बात, व्यर्थ की बातें, टाइम पास करने वाली बातें, टीवी सीरियल देखना, ये सब बातें क्या है, वातावरण को पावरफुल बनने नहीं देती है। विकार की बातें करना या सुनना ये भी वातावरण को पावरफुल नहीं बनने देती। इसीलिए इन सब बातों को हमें विशेष अटेंशन देना है, ध्यान देना है और छोड़ना है। वातावरण पावरफुल बनने से फायदा क्या क्या होती है, अगर वातावरण पावरफुल है, अगर उस स्थान पे हम है, हमारी स्थिति सहज ही श्रेष्ठ बन जाती है, ऊंचा बन जाता है। बाबा से हमें सहज ही शक्ति की प्राप्ति की अनुभूति होती है। एक बार की बात है, नेपाल में जो बाबा के गीता पाठशाला है उसमें थोड़ा हलचल हुआ था। उसमें बाबा के बच्चे तो गिने चुने ही 2-4-5 ही होते हैं, और जो हलचल करने वाले थे वो थोड़ा ज्यादा भी थे और थोड़ा एजुकेटेड भी थे। हमको हम सबको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कि नहीं करना क्या है, जवाब क्या देना है। और जो दूसरे पक्ष वाले जो मेन थे वो बहुत हलचल कर रहे थे। फिर उनके जो रिलेटिव थे, जो मेरा लौकिक में टीचर भी होंगे थे, उन्होंने बोला कि आप जो ये बात बता रहे हो, आपको पता है कि कौन सा स्थान है, इतनी पवित्र स्थान, इतनी पवित्र वाइब्रेशन, इतना स्वयं परमात्मा के बैठे हुए जगह पे ऐसी बातें करना आपको शर्म नहीं आती, ऐसे उनको बोला। आप जिसकी गलानी करते हो स्वयं भगवान है, जबकि उनको हमने प्रदर्शनी भी नहीं कराया था, कुछ भी नहीं, बाबा का कुछ भी पता नहीं था, और उनका मुंह बंद करवाया और हम सब हल्के हो गए। नहीं तो अंदर से इतना भारी हो रहे थे, इतना पूरे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे उधर। वो किसकी बदौलत थी, उस वाइब्रेशन की, बाबा की शक्ति की बदौलत थी। बाबा से टचिंग भी क्लियर टचिंग हो जाए, यथार्थ टचिंग होगी। हमको याद है कई सारी भाई बहने बोलते हैं, भाई जी हम मधुबन में संकल्प किया और पूरा हो गया, हमको मन में आया और ये बात प्रत्यक्ष हो गई। कैसे हुआ ऐसे, अखंड तपस्या के बल के कारण ही हुआ, पवित्र वाइब्रेशन के कारण से ही हुआ ये सब। बाबा से क्लियर टचिंग होगी, शुद्ध संकल्प सहज ही पूरा हो जाता है। और दिल अंदर से संतुष्टता होती है आत्मा की, अंदर से दिल नहीं खाता है। नहीं तो बहुत सारे ब्राह्मण को हर कुछ दिनचर्या एक्यूरेट करने के बाद भी कहीं ना कहीं दिल खाता रहता है, ऐसे नहीं होगा। आने वाली आत्माओं को भी बाबा की करंट, बाबा की शक्ति मिलेगी, स्थान के वाइब्रेशन का करंट मिलेगा। एक बार की बात है, हमारा जो मुख्य सेंटर जनकपुर में, वहां पे 3 दिन का भट्टी रखा था, और उसी शहर में भाई भी कॉलेज में पढ़ रहा था। हमने मैसेज किया उनको कि आप हम आ रहे हैं तो आप मिलने के लिए आ जाना। वो ज्ञान से पूरा अपोजिट थे, तो ज्ञान की वजह से नहीं आए, वो हमसे मिलने के लिए आए। हमसे मिले जुले और टोली प्रसादी खाया और वो चला गया। फिर वो अपने साथ दो तीन अपने फ्रेंड को भी लेके आया था कि चलो भाई जी से मिलेंगे बोल के। तो साथ वालों को बोल रहा था वो कि मैं तो सोच रहा था जल्दी ना निकल जाओ भैया, तो ओम शांति बन गए, मेरे को भी ना बना दे, लग रहा था कि मुझे खींच रहा है उधर। और भाई अभी यहाँ पे बहुतों को पता भी है कि भाई ज्ञान में अच्छी तरह चल रहा है, दो बार मधुबन में आया है और कतार में गीता पाठशाला चला रहा है। हाँ कतार में एक सेंटर है और गीता पाठशाला है, तो सेंटर तो ये भी मना सेंटर का ही कनेक्शन है, लेकिन सेंटर दुबई से भाई बहने आके, समर्पित भाई बहने आके चलाते हैं, और गीता पाठशाला बहुत सारे भाई जी सब है, सब मिलके चलाते हैं। तो आने वाले को भी बाबा का करंट, बाबा की शक्ति मिलेगी। समस्या का समाधान मिलेगा उस स्थान पे जाने से ही, समस्या का समाधान मिलेगा, मन की उलझन, मन की गुथरी सुलझ जाएगी, श्रीमत की अवज्ञा नहीं होगी, श्रीमत पे चलने का, बाबा के आज्ञा पे चलने का बल मिलेगा, बाबा के घर का वातावरण अगर पावरफुल है तो असलम का स्थान, सहारे दाता का स्थान अनुभव होगा हरेक को, जादू का स्थान बन जाएगा, मनुष्य को देवता बनाने की सरोवर बन जाएगी, उस स्थान पे पहुंचते ही सहज ही बाबा से योग लग जाएगा, मन वांछित फल प्राप्ति होगी। वातावरण को पावरफुल बनाने से, उस वातावरण से। तो अभी हम फिर से प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। प्रश्न था वातावरण को पावरफुल बनाने की विधि क्या है, बाबा ने उत्तर में बताया पहले स्वयं पावरफुल बनो, उसके लिए अमृत वेले से लेकर हर कर्म में अपना स्टेज शक्तिशाली है या नहीं उसकी चेकिंग के ऊपर में, और थोड़ा विशेष अटेंशन हो दूसरों की सेवा में व सेवा के प्लान्स में बिजी होने से अपनी स्थिति में कहाँ कहाँ हल्कापन आ जाता है, इसीलिए वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। सेवा होती है लेकिन वातावरण शक्तिशाली नहीं होता है, इसके लिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना पड़े। कर्म और योग और कर्म के साथ शक्तिशाली स्टेज, इस बैलेंस की थोड़ी कमी है, सिर्फ सेवा में बिजी होने के कारण स्वयं की स्थिति शक्तिशाली नहीं रहती है। जितना समय सेवा में देते हो, जितना तन मन धन सेवा में लगाते हो, उसी प्रमाण एक का लाख गुना जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। इनका कारण है कर्म और योग में बैलेंस नहीं है। जैसे वह बाहर के साधन बनाते हो, वैसे पहले मनसा शक्तिशाली का साधन बनाओ। यह अटेंशन कम है, मनसा शक्तिशाली बनाने का अटेंशन कम है। फिर कह देते हैं बिजी रहे इसीलिए थोड़ा सा मिस हो गया, फिर डबल फायदा नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति।
सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन, भगवान कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार।